yang dia faham. Wahi satyam parma dhimahi. Krishna jo tri satya hain aur wahi parabrahma hain, wahi nigurh brahma hain, gurh brahma, gurham brahma,
gurham parabrahma
aur अहो भाग्यम अहो भाग्यम जगत नंद रूप प्रजौतकाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन इत्यादि भी बताया। तो उसी को करें सप्तम परम धीमहि, उस परम सप्त स्वरूप पर ब्रह्म का मैं। वो कहते हैं जन्मादश जगत, ये दूसरे अर्थ में लिखे कृष्ण के अर्थ में, जिनके आद्य जन्म,
जिन्होंने जन्म आदि से लेकर के
आद्य
जन्म आदि से लेकर के सभी लीलाओं को प्रकट किए,
वो जी गोस्वामी करता है, वो जी गोस्वामी जन्म गोकुल में, मथुरा में या गोकुल में जन्म से लेकर के जितनी लीलाओं को प्रकट, ये जी गोस्वामी, जी गोस्वामी का जब बतलाएंगे तो ये इतना चतुर्थी ठाकुर कर रहे हैं। जन्मादस्य जप आद्य सिंगार, सबसे पहला शांत रस है या मधुर रस, कौन रस
आदि
कौन रस है पहला? पहले तो आदमी कौफा कौफा से और से पढ़ता है ना, किंतु इस जगत का नियम है हम कौफा कौफा नीचे से चलो, किंतु उस जगत का नियम क्या है? वो ऊपर से उतरता है, उसका मूल है ऊपर और नीचे उसकी शाखाएं और फल फूल पत्ते दादू उसका है
संसार आदि।
तो वहां पर जितने रस हैं इस जगत में, जब रस की शिक्षा करेंगे तो पहले शांत से हम चले, शांत दक्ष सप्त बात्सल्य और किंतु जब विचार करेंगे वैज्ञानिक सरस्वती से तो आज रस मैंने पहला रस ही है सिंगार, उसी से ही समस्त जितने भी रस होते हैं इसे प्रकाशित, उसी के अंदर में सब है अंकित। जैसे कृष्ण प्रकट होते हैं तो जितने पहले के उनके अवतार हैं, अंश हैं, कला हैं, तत्व वैभव हैं और भविष्य में भी जितने अवतीर्ण होंगे वो सब कृष्ण के साथ में उनके अंतर में प्रकट हो, सबको थोड़ी भूत होकर के रहते हैं, ऐसे श्रृंगार रस में ही ये सब रहते हैं, इसलिए आदर तो जिनके श्रृंगार रस होता है प्रकटित होता है वो कैसे होता है? अन्वयादि इस अवसर से, अन्वय माने संयोग के द्वारा, कृष्ण का पहला राग होता है पूर्व राग से, उनको देखने से आरंभ करके मिलन तक ये सब जितने उनके भाव हैं ये एक उससे संयोग है। और दूसरा होता है मिलने के बाद में जब विरह होता है तो विरह, यही दोनों प्रकार के प्रेम हैं। इन्हीं प्रेमों की मूर्तियां कौन है? गोपियां। तो इसको ये बतला रहे हैं जब जिनके द्वारा कृष्ण ही यदि नहीं होते तो ये आदरस कभी भी संभव नहीं, इसलिए इसके मूल ये कृष्ण। कौन कृष्ण है? स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही ये स्वयं वो है। अर्थेतु, यहाँ अर्थेतु मैंने जो श्रृंगार रस की जो 64 प्रकार की कलाएं हैं उन सब कलाओं में ये अत्यंत अभिज्ञ है, भक्ति से आरंभ करके जितनी 64 प्रकार की कलाएं हैं इसका अतिरिक्त नीच गीत वाद्य किसी को मनाना इत्यादि जितनी भी कलाएं हैं समस्त कलाओं में कृष्ण ही अभिज्ञ है, इसके अतिरिक्त में बल्कि उन्होंने दिया है हर कमी के हृदय में कुछ थोड़ा सा उन्होंने प्रकाश किया, इसलिए थोड़ा सा वर्णन किया, किंतु उनका वर्णन अमांग मन सो गुरु चरण प्राकृतिक पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। जिस रस में ये अभिज्ञ है कोई भी दूसरा अभिज्ञ नहीं। इसलिए अर्थेसु अर्थेसु माने वो सब जो प्रेम की जो कलाएं हैं उन सब में ये अभिज्ञ है। स्वराज उनको किसी से सीखना नहीं है, वो सब प्रकाश वस्तु है। तेने ब्रह्म इलाज आज कबे मुहि अंत जब तू गया। जिस दिशा में बड़े बड़े मुक्त महापुरुष लोग भी ब्रह्मा शंकर और दूसरे दूसरे लोग जब ब्रह्म रुद्र सुकनारद भीष्म मुख कई आलक्षित अनुसार का पुरुष होता ये सभी मोहित हो जाते हैं उसको। अर्थात तेने ब्रह्म रस ब्रह्म हृदय भक्त हृदय सुखदेव गोस्वामी इत्यादि ये उन्होंने प्रकाश किए। ब्रह्मा के लिए तो होगा शब्द ब्रह्म वे उनको हृदय में प्रकाशित, किंतु सुखदेव गोस्वामी इत्यादि के हृदय में या व्यास और नारद के हृदय में उन्होंने तेने रस ब्रह्म उनके हृदय में प्रकाशित। आदि कवे मुहियन सिज सूरी लोग आदि कवि तक भी आदि कवि ने भक्त इत्यादि जिसमें मोहित हो जाते हैं, और नहीं तो आदि कवि जब इधर में लाएंगे तो आदि कवि ब्रह्मा नारद व्यास सुखदेव इनके हृदय में रस ब्रह्म की उत्पत्ति ने प्रकट किया, जिससे कि श्रीमद् भागवत जैसा रस ग्रंथ उन लोगों ने जगत में प्रकाश किया, नहीं तो ये कभी नहीं हुआ। कह क्यों वो दूसरा श्लोक श्रीमद् भागवत का निगम फलम सुखम खाद अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम ये श्रीमद् भागवत ही रस का आलय। ये यदि नहीं प्रकाश करते तो नहीं हो सकता था। मोहियन से जब सूर्या जिसमें ये सब जो बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी महर्षि और ब्रह्मा इत्यादि हैं शंकर जी हैं ये सब लोग जिसमें मोहित हो जाते उसको तेज बार मृदान जिस कृष्ण के वृंदावन में बिहार में जो लीला हुई उन लीलाओं को दर्शन करके उस रस को दर्शन करके जिन्होंने बंसी के द्वारा जिस रस को उन्होंने वर्षा की उस रस से हुआ क्या तेजो बारी मृदान जस्वतिमय जिससे ये चंद्र जो हैं वो क्या हो गए मिट्टी के समान बन गए। कहां चंद्र सरोवर पर वो चलना भूल गए और जो तेज हैं वो मलिन हो गए। उस रास में कृष्ण का सौंदर्य देख करके वह एकदम मलिन बन गए और तेजो बारी जमुना का जल जो था वो मट्टी बन गया पत्थर जैसा कठोर बन गया और मृदंग पहाड़ गिरिराज और चरण पहाड़ी पिघल गए और भूमि सब पिघल गई जिनके बंसी की ध्वनि से जिनके रूप को सौंदर्य को देख करके और बंसी का यह रस वर्षा से सब उलट उलट जड़ चेतन हो गया और चेतन जड़ का हो गया। काश्यम से कल्पदायक देव दीप सम्मोहिता अर्चिता न करे त्रैल त्रैलोक्तम जब वो दूर विक्रम तो कारण है तेजो बार मृदान जिसके साधारण रूप में दर्शन से जिसके रूप के माधुर्य से बंसी के निनाद से विनिमय एक दूसरे जैसे अर्थात जड़ चेतन जैसा चेतन जड़ जैसा तेज साधारण जैसा दिखाई पड़े मलिन और बारी जमुना पर्वत इत्यादि जैसे कठोर बन गई और मृदंग मृदंग माने मिट्टी का जो ये रूपांतर जो पत्थर इत्यादि वो सब पिघल करके पानी बन गए। जहां की जब तक सी सर्वो अमृता जहां पर कि तीन सर्ग क्या गोकुल मथुरा
और
द्वारका मथुरा और ये तीन सर्ग अमृता ये नित्य परम सत्य है और रागिनी संदीप और संदिनी ये तीनों जो शक्तियां हैं ये तीन जो सर्ग हैं और इनके जो प्रकाश हैं सब समय नित्य हैं और सर्वत्र ये व्याप्त हैं तीसर्ग और कृष्ण की त्रिविध लीलाएं हैं। कैसी लीलाएं ये तीन प्रकार की जो लीलाएं हैं ये त्रिसर्ग जो हैं सब समय नित्य सत्य हैं उन सब के साथ में अपनी शक्तियों के साथ में धामना सलीना अपने धाम में अपनी शक्तियों के साथ में नित्य जो विराजमान है निरस्त को वहां पर माया का कोई भी कुछ नहीं है। सत्यम परम भी उस सत्य स्वरूप परम सत्य स्वरूप जो कृष्ण है उनका मैं वो हमारे ध्यान में। अब तीसरा केवल कृष्ण से नहीं रस होगा नहीं हो सकता शक्ति प्रधान रहेगी। राधा कृष्ण सीता राम इत्यादि जितने भी हैं ये शक्ति की प्रधानता की ये जो कुछ जगत में दिखता है शक्ति की ही वैचित्रता दिख पड़ती है शक्तिमान नहीं दिख पड़ता उसका स्वरूप लक्षण है केवल इच्छा शक्ति स्वतंत्र इच्छा और जो कुछ देखते हैं शक्ति की ही ये विशेषता है। तो यहां पर कहते हैं जन्मादस्य जतम सत्यम परम अभिमही सत्य स्वरूप भगवान की लादरी शक्ति रूपी महाभाव रूपा जो राधा जी और उनके साथ में रसराज जो कृष्ण हैं उन दोनों का मैं ध्यान करता हूं जो अपने धाम में सत्य में लीला विलास में रहते हैं अपनी शक्तियों और अर्थात अपनी शक्तियों इत्यादि गोपियों के सहित उनका मैं ध्यान करता हूं दोनों का जिससे जन्म आदि श्रृंगार रस का जिससे जन्म होता है अन्वय और व्यतिरेक रूप में होता है। कैसे अन्वय रूप और व्यतिरेक रूप में संयोग के रूप में राधा जी के साथ में कृष्ण का साथ यदि संयोग होगा तो ये महाभाव रूप अधिरूढ़
मोदन
में मोदन
मदन मादन
मादन
मोहन
दिव्य दिव्योन्माद प्रेम वैचित्र यहां पर पहुंच जाएगा जो कहीं नहीं प्रकार और वियोग में चित्र जल इत्यादि तक मोहन के रूप में ये पहुंचता है। यह दोनों मरे तो रस परिपूर्ण नहीं होगा इसलिए मिलन और योग दोनों से ये मिल करके ये कृष्ण का यह जो रस है आद्य रस ये पता इनमें ये कृष्ण और राधा जी अभिज्ञ रस कैसे निष्पत्ति होगी इसके लिए राधा जी अभिज्ञ हैं इसलिए अभिज्ञ होकर नाते वो मान कर लेती है किस लिए रस को नित्य नूतन बनाने के लिए मान कर लेती और कृष्ण को अपनी सेवा में नियुक्त कर देती है नहीं तो रस बनता ही नहीं इसलिए राधा जी अभिज्ञ हैं उधर कृष्ण भी अभिज्ञ हैं परम विदग्ध हैं रस विषय में इसलिए वो राधा जी का मान दूर करने के लिए सब कुछ करते प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं ऐसा कभी भी किसी भी भगवत अवतार में उन्होंने नहीं किया इसलिए किसी भी अवतार में ये सब रस नहीं हुआ और अवतारों में अधिक से अधिक ऐश्वर्य की लीलाएं हुई, माधुर्य की लीलाएं नहीं हुई, तो बहुत अल्प हुई, प्रकाश नहीं है, किंतु कृष्ण में ही ये लीलाएं, राधा कृष्ण के लीलाओं में ही रस पर सम तक पहुंचा। अधिक यह स्वराज राधा जी भी अपने में पूर्ण है और कृष्ण भी अपने में परिपूर्ण है दोनों। तेने ब्रह्म हृदा, इन्होंने वही रस ब्रह्म सुखदेव गोस्वामी के हृदय में आदि कवि प्रकट हुए, क्योंकि ये कृष्ण के सुख हैं, राधा जी के सुख हैं और कृष्ण के हाथों में गए हैं और सब इनकी अनुभूति हुई है सू, किंतु उनके हृदय में इन लोगों ने दोनों ने मिलकर के प्रकाश किया उस अवस्थ ब्रह्म सब ये जगत में उसको गुरु परंपरा की धारा से अब तक हो गए। जत्र आज मुहियन से जब छू गया ब्रह्मा शंकर इत्यादि वही अर्थ, सब लोग इस अरस में मोहित हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं इनको, यहां तक कि ब्रह्मा भी ब्रज में आए किंतु इस अरस तक नहीं पहुंच पाए, बस बाल्य लीला एक देखी और ऐश्वर्य देखा जो उन्होंने अभासुर को भी मुक्ति दे दी और इसी में वो आश्चर्यचकित होकर तो बस इतने ही रह गए। कृष्ण ने कुछ दिखलाना भी चाहा तो वो पहले चतुर्भुज रूप में दिखे और फिर इसके बाद में कृष्ण रूप में देखे। जितनी जितनी जगत के जितनी भी वृक्ष लता गुल्म सब कुछ को उन्होंने कृष्ण के रूप में दर्शन, यहां तक उनकी बंसी तंसी सब कुछ वो कृष्ण, बस कुछ उनके दिमाग में नहीं आया तो वो लक्ष्मी की भांति में गिर पड़े और वो वर्णन करने लगे। वो श्रीमद् भागवत के 14वें दशम के 14वें कुछ कुछ वर्णन किया। तो इस तरह से ब्रह्माचार्य जिसमें मोहित हो जाते हैं, तेज बार मृदान जत्र विमयो, इनके दोनों के मिलने से जो रस होता है उस रस में यही बतलाया जा, पहले जमुना चंद्र
चरण
पहाड़ी इत्यादि सब द्रवित हो जाते हैं, आज भी उनके चरण चिन्ह वहां पर देखे जा सकते हैं। जब तक तीसर वो अनुमृता, तीसर वो राधा कृष्ण का तीसर का क्या
मिलन और
यही सब होगा कुछ, ये तीनों सर्व जो है तीसर वो अमृत, अतः तुम उनकी जो लीला है ऐसा हो दिया वृंदावन में पूर्ण लीला उनकी परिपूर्णतम, मथुरा में पूर्णतर अर्थात सप्तधामा रुक्मणी इत्यादि ये सब वहां की और द्वारका में पूर्ण वहां पर रुक्मणी सप्तभामा के रूप में राधा जी और कुछ मिले। इस तरह से अपने धाम में सदा तीन सदा निरस्त हो हम सप्तम परम धीमहि, उस राधा और कृष्ण को मैं ध्यान करता हूं हमारे हृदय और भक्ति वृत्ति के लिए क्या कहा, जिस कृष्ण से कृष्ण की कृपा से ही केवल अर्थात भक्ति जब तक नहीं रहेगी कृष्ण को नहीं हम लोग पा सकते, इसलिए जन्मादस्य जतः भक्ति के द्वारा ही भक्ति का जन्म या प्रादुर्भाव होता है, पहले होता है साधन भक्ति फिर भाव भक्ति और अंत में प्रेमा भक्ति, अन्वय और इतर, अन्वय मैंने क्या श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये हुआ अनुकूल अनुशीलन और प्रतिकूल जो कि त्याग करने लायक हैं, अपराध अनर्थ इत्यादि सबको दूर करना, कुटीनाटी इत्यादि की हिंसा इत्यादि है ये सबको दूर करना। इसके द्वारा मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा वेग, उदर और जो जो गोस्वामी ने और इन सबने पर इन सबको दूर किया जाए और भक्ति को ग्रहण किया जाए। अनुकूल अनुशीलन और प्रातिकूल वर्जन, अपराध इत्यादि और भाव, इसके द्वारा भक्ति स्वतंत्र है, किनमय वस्तु है। जब देखती है कि ये इसके स्तन हमको उत्पन्न होना है तो भक्ति अनुग्रह करके उसके हृदय में जीवित हो जाए। नमात्मा प्रवचने लभ्य, उसी तरह से भक्ति का भी और स्वरा किसी अन्य योग तपस्या प्रत इत्यादि के द्वारा भक्ति प्रकटित नहीं होगी, ज्ञान से भी नहीं होगी, योग से भी नहीं होगी। इसलिए बतलाया अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान के द्वारा नहीं होगा। ज्ञाने प्रयास हम उदपाच्य, ज्ञान के प्रयास को छोड़ो। योग तपस्या प्रथम सब है सदाचार इत्यादि से वो भक्ति नहीं होती। भक्ति स्वतंत्र अवलंबना, भक्ति स्वतंत्र होती
है।
तेरे ब्रह्म दया जब आग कमे मुहंत जब सूर्य, वही भक्ति रे मैनन नयति, भक्ति दर्शयति
भक्ति भक्ति
भक्ति वही भगवान का दर्शन कराती है। इससे भक्ति आद कवे माने ब्रह्मा के हृदय में प्रकट हुई और उनसे नारद, नारद व्यास, इस तरह से वो भक्ति की परंपरा आज तक भी गुरु के परम धारा में आ गई, जिसमें बड़े बड़े सूरी लोग, ज्ञानी लोग और सब लोग मोहित हो जाते हैं। किसमें? प्रेम भक्ति के लिए। तेजो बार निदान जत्र विनिमय, इसके लिए देखना पड़ेगा ये क्या यथा विनिमय जत्र तीस और वो अमृता। भक्ति के तीन ये जो भाव, साधन भाव और प्रेम, तीनों ही सत्य हैं। तीनों अवस्था में ही भक्ति निर्गुणा है, केवल साधना के और साधक के मन के तारतम्य से उसको ऐसा कहा जाता है, किंतु भक्ति एक ही है। वो अपने धाम में निरंतर रह करके और कृष्ण की सेवा करती है और जीवों को भी लेकर के वहीं पर उनको करती है। ऐसी भक्ति के लिए हम सत्यम परम अभिमय हम उनका तात्पर्या। आज अभी हम लोगों को कृष्ण जन्मभूमि में जाना है, इसलिए आज यही पर हम समाप्त करते हैं। कल से हो रहा और दूसरा भाव और अर्थ जो है हम बताएंगे आज मन का कल कल। अच्छा, हम लोग भक्ति प्रेम राधा सबको कृष्ण सबको प्रेम सबको विलास सब कुछ को प्रकाश कर, ऊपर से नहीं किसी को जानने दिया, उनको भी नहीं जानने दिया और प्रकाश कर। ऐसे ही ब्रह्मा जी को जैसे हुआ है हमारे हृदय में आपने ये प्रकाश किया, मैं तो इन चीजों को जानता नहीं। अच्छा, सचमुच में ये विशाखा सखी यदि थे तो ये जानते थे कि नहीं? जानते तो थे, किंतु योग माया के प्रभाव से कृष्ण अपनी भगवत्ता को, आराधा अपने को साधनी सकती और गोपियां अपने को वैसी, ये योग माया के प्रभाव से नहीं जानते। कृष्ण भी नहीं जानते कि मैं भगवान हूँ, इसी से उनकी लीला हो कि नहीं, लीला नहीं होती। उसी तरह से विशाखा जी हैं रामन, किंतु उस समय तक योग माया के प्रभाव से उनका यह भाव आच्छादित है। महाप्रभु जी की कृपा से फिर योग माया वहां से थोड़ी सी हट गई और उनका भाव यहाँ पर कह रहे हैं। अब वो समझ गए उनके बोली से, चाली से, ढंग से और उनके प्रश्न पूछने के तरीके से वो समझ गए ये जो सामने जो सन्यासी हैं ये सन्यासी नहीं है, ये कोई ये कपट कपट सन्यासी है।
ये धूत स्वयं और ये धूत और कोई नहीं, ये कृष्ण ही स्वयं है, वो समझ गए। और चतुराई से ये प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, पूछने के ढंग से ही पता लग जाता है ये कौन कहते, तो वो समझ गए। उन्होंने इसको संशय के रूप में प्रकाश किया, प्रभु हमारे हृदय में एक संशय आ गया। जैसे क्या संशय आ गया, तो वो कहते हैं कि ठीक है संशय आपके सामने प्रकाश करना, आप कृपा करके उस संशय को आप पहले देख लू तुम्हार सन्यासी स्वरूप एडे तुम्हार देखी मुई श्याम गोत्र। पहले जब मैं आया यहाँ आप मिले तो आपको एक ब्राह्मण सन्यासी तेजस्वी सन्यासी के रूप में आपको हमने देखा, किंतु इन प्रश्नों के बाद में अब मैं जो आपको देख रहा हूँ अब तो सन्यासी रूप मुझको आपके अंदर में दिखता नहीं महाप्रभु जी, किंतु उस समय में सन्यासी वेश में ही है, किंतु ये कारण अब मैं आपको सन्यासी के रूप में नहीं है। अब देख रहा हूँ श्याम गोप रूप, गोप रूप में जो श्याम, अब उसी श्याम से मैं देख रहा हूँ, हाथों में बंसी है, सिर पर मोर मुकुट है, पीताम्बर की काशिनी है, यहाँ पर पीताम्बर लहरा रहा है, होठों पर मुरली है, वो ऐसा सुंदर मेरी पासा देख रहा है। कुमार सन्मुख देती कंचन पंचाली उसके सामने कह रहे हैं, किंतु आप कृष्ण ही हैं, कृष्ण के रूप में गोप के रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं अपने बीच में और आपके बीच में आपके ऊपर में एक कोई छाया है, वो छाया क्या है, कंचन पंचाली का, पंचाली के माने पुतल, एक सोने की पंचालिका माने मूर्ति है, वो सोने की मूर्ति कौन है, तार गौर कांति तुम्हार सर्व कांति घाटा, वो इतनी सुंदरी है जिसका हद नहीं। कृष्ण बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, वे मदन मोहन है, इतने सुंदर है कोटि कोटि मदन कामदेव लज्जित हो जाए उनके रूप को देखकर, किंतु श्रीमती राधिका जी और सुंदर हैं, जो वो भी उन पर मोहित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि आपके सामने ही मैं देखता हूं एक गौ कांति से भरी एक सोने की पंचालिका मूर्ति है, बहुत ही अद्भुत सुंदर, कहां से प्रकट देखी बंसी वदन उसमें मैं प्रकट देख रहा हूं कि आप बंसी वदन कृष्ण ही है श्याम है, और वो श्यामा नाम की किंतु है कैसी, सोने की मूर्ति जैसे होती है कैसे सोना, जो पिघलाया गया हो अभी तुरंत थल थल एकदम पीला का भाव, गौर वर्ण का भाव, उसे आपकी सारी कांति समस्त सारे अंग पैरों से पैर वस्तखल से वस्तखल सिर से मुखारविंद से मुखारविंद हाथों से हाथ समस्त अंग ही उसके जो किशोरी है श्यामा जी है गौरी, उस गौरी के अंगों से और उसकी कांति से आप कहां से प्रकट देखी स्वंशी वदन, उसमें मैं देख रहा हूं राय रामानंद कह रहे हैं उस सुंदर गौर कांति वाली राधिका के पीछे सोने की जो मूर्ति है उसके पीछे वंशी वदन है, नौ किशोर नटवर वंशी धारी बहुत ही सुंदर नाना भावे चंचल ताहि कमल नयन। और आप जो श्याम सुंदर हैं, आपके नयन कहते हैं चंचल कमल के समान नयन है। नयनों में कमल जैसी समस्त माधुरी माया है उनमें, और चंचल है मानो इसलिए चंचल, जैसे हिरणी का बच्चा छोटा सा हिरणी चलचल नेत्रों से इधर उधर देखती है ऐसे गीत होकर। तो यहाँ पर मानो किसी को खोज रहे हैं इसलिए चंचल है, इधर देख रहे हैं। यही मुसलमान कुमार देखी है चमत्कार। अकपट कह प्रभु कारण निहार, मैं ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। क्यों नहीं? कृष्ण लीला में उन्होंने कृष्ण को देखा है और राधा जी को भी देखा है, किंतु ऐसा रूप नहीं कभी देखा जो दोनों मिलकर के एक हो गए हों और श्याम कांति ढक गई हो गौर कांति के द्वारा। कोई चीज किसी चीज से ढकती है कब? कब ढकेगी? जिसका प्रभाव अधिक होगा वो दूसरे को ढक लेगा। और शक्ति ही शक्तिमान को प्रकाशित करती है। राधा जी कृष्ण के स्वरूप को और जो कुछ उनकी भगवत्ता है राधा जी ही कारण है। इसलिए राधा जी की कांति से उनकी कांति श्याम कांति ढक करके एक ऐसे अपूर्व दोनों का मिलन, उधर नीलमणि नील जैसी आभा, इधर स्वर्ण कांति, दोनों मिलकर के एक तीसरी कोई अद्भुत कांति बन गई। इसी का नाम है रसराज महाभाव। मैंने पूछा जी से ये कैसे हुआ बतलाइए तो, मैंने तो आपको श्याम के रूप में भी देखा और आपकी श्यामा जी को भी देखा, किंतु ये अद्भुत ये दोनों का मिश्रण ये कैसे ये हुआ बतलाइए आप कौन है? प्रभु कहे कृष्ण तुम्हार गाढ़ प्रेम है, तुम्हार स्वभाव यही ज्ञानी हो निश्चय, प्रेमी प्रभाव यही ज्ञानी हो। महाप्रभु ने हंस दिया, ये तो हमारे भाव को समझ लिया कि मैं कौन हूं, मैं वही श्याम हूं, राधा जी के भाव और कांति को लेकर क्या हूं ये समझ गया। इससे थोड़ी सी उन्होंने मुस्कुरा दिया, ये चोरी की कलई खुल गई, इसलिए वो थोड़ा हंस दिए और कह रहे हैं मैं तो जो हूं तुम देख रहे हो, जो मैं ब्राह्मण सन्यासी हूं, मैं तो वही, किंतु तुम्हारा कृष्ण के प्रति अबाध निष्ठा है, इसलिए तुम सर्वत्र जिधर ही देख रहे हो उधर श्याम 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 देख रहे हो। मैं बदला नहीं, हमारे अंदर में भी और जहां जहां तुम्हारा नेत्र पड़ा सबको तुम श्याम मई देख रहा है। केवल प्रेम का स्वभाव ऐसा होता है। महाभागवत देखे सावर जंगम जहां तहां हस्तार कृष्ण पुरुष सावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है तार इष्ट देव को। साधारण रूप में एक ऐसी कहावत है कि चोर सबको चोर ही देखता है, काम का पसंति काम सिंहायन जगत, चोर सबको चोर ही देखे, जितने देखेगा सभी चोर रहते हैं। और जो कामी पुरुष है वो सर्वत्र नारीमय कामनीमय, ये ऐसा जो जैसा है जाति रही भावना जैसी हर मुहूर्त देखा तो वैसा ही देख लिया। तो इसमें जिसको जो देख रहा है उसकी ये ऐसी बात नहीं है, वो तो प्रेम जिसके प्रति हो जाता है जिसके प्रति भावना रहती है वैसा ही आदमी देखता है। जैसे रुक्मिणी सत्यभामा कृष्ण के प्रेम में रो रही थी तो रात में उन्होंने देखा कि कुरली नाम का एक पक्षी भी विलाप कर रही है, तो कुरली से पूछती हैं, अरे प्यारे चकी, जैसे हमारे पति का वियोग हो गया तो तुम्हारे पति का जरूर वियोग होगा, हो गया नहीं तो तुम रोती नहीं। तुम इतनी जब रो रही है तो जरूर तुम्हारा पति का वियोग होगा, जैसे हमारा अपनी जैसी देखते। ठीक ऐसे ही भगवान का भजन करते 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 निष्ठा से रुचि आसक्ति भावावस्था अंत में प्रेम के प्रादुर्भाव होने पर ऐसा है। उत्तम महाभागवत प्रहलाद महाराज जी से आरंभ करके और उसके ऊपर वाले जितने भी हैं वो ऐसा ही देखते कौन है। तो ऐसा ही हो जाता है, कृष्ण प्रेम का नशा ऐसा चढ़ जाता है कि सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण दर्शन। और यदि कोई राधा पक्ष कोई गोपी का भाव लेकर के भजन करता है तो वो कैसा देखेगा, सब राधा मय कृष्ण सर्वत्र, जैसे ब्रह्मा ने सर्वत्र ही कृष्ण कृष्ण देखा, साधु सुंदी जी ने राम मैं सब जगत को देखा, सर्वत्र राम ही राम देखा, या पार्वती जी जी की कथा जो मैं कहता हूं वो ऐसे ही एकदम राम 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 सर्वत्र देखी। तो ये महाभागवत लोग भजन करते करते जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है तो वो निष्ठा निश्चलता आ जाती है, ठीक है। इसके बाद में भजन करते 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 उसमें रुचि हो जाएगी, रुचि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आसक्ति होगी, यही आसक्ति पहले भजन में भजन के प्रति और फिर
भजन
भजन के प्रति हो जाएगी, तब फिर भगवान की बड़ी पर दया हो जाती है, तब उस जगत से वो भाव उनके परिकरों में से इनके यहाँ खुश हो जाता है। वह भाव इस जगत का कोई मन की कोई कल्पना नहीं है, जो मन की कल्पना से ऐसा हो जाएगा। अभी हम रोते हैं हंसते हैं मन की स्थिति के अनुसार, कोई मर गया तो रोते हैं, कोई बच्चा जन्म ले लिया तो खुद हंसते हैं, हंसने की बात होती है हंसते हैं, रोने की बात होती है, अपने मन की ये सब भावना है। किंतु वह जो प्रेम है वो जगत की चीज नहीं है, भगवान के परिकरों में से यहाँ पर आदित होता होता है, तो वो यथार्थ भाव है। वह भाव उत्पन्न होने पर सर्वत्र ही अपने सुदेव की मूर्ति को देखेगा। प्रहलाद महाराज जी से पूछा कंस ने, अरे तू डरता नहीं है, तुमको आग में जलाया, तुमको बीज खिलाया, पहाड़ों से गिराया, समुद्र में मैंने फेंकवा दिया, हाथियों के पैरों के नीचे दबाया, ऐसा कोई उपाय नहीं, सांपों से कटवाया, बीज दे दिया, तू मरने ही रहा, तू तो देखते कि अद्भुत व्यक्ति, तो तुमको इतना निर्भय तुम कैसे हो गया, तुम्हारा बल कहाँ है। तो उन्होंने कहा जो सबका बल है, जो सबका सहारा है, वह भी मेरा सहारा है, मैं उसी के बल से सर्वत्र निर्भय हूं, किसके, भगवान के बल से, और वो सब में है अंतर्जामी के रूप में, कोई अनुभव करता है कोई करता है, मैं तो उस प्रभु को सर्वत्र ही देखता हूं, समस्त जीवों में उस प्रभु को देखता हूं, और उस प्रभु में समस्त जीवों को दर्शन करता हूं। अभी ये श्लोक आएगा, सर्वभूतेषु जः पश्यत् भगवद्भाव आत्मना भूतानि भगवत्तात्मन्येत भागवत। भजन करते करते भगवान की उपलब्धि, ये झूठ मूठ का कि कोई कल्पना नहीं है, जो भगवान है भजन करने से ऐसा होता है। पहली स्थिति में संदेह लोगों को रहता है, अच्छा भगवान का भजन करते हैं तो हमारा अमुक व्यक्ति क्यों मर गया, लोग ताना देंगे ये इतना भजन करने वाला या करने वाली और उसका यह प्यारा व्यक्ति चला गया, ये कैसे हुआ, क्यों, वो सब सिखा देगा, ये सब साधुता इत्यादि जितने सब धकोच ले, ये एक पेट पालन करने का, पैसा रोजगार करने का एक अंदर है, झूठ मुठ को संत होना चाहिए। तो अच्छा वो क्यों मर गए, वो क्यों मर गए? महात्मा जी जो सबको सांत्वना दे रहे थे कि भगवान, तो वो क्यों मर गए? अरे वो तो समझते नहीं है कि ये कपड़ा है। बुद्धिमत्ता यही है कि पुराना फटा होने पर उसको बदल दिया जाए। उनके समझ में ये कभी नहीं आता। तो भगवत भक्त जो होता है, तो साधन करते 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 जब महाभागवत चला जाएगा, पहले कनिष्ठ अधिकारी, फिर मध्यम अधिकारी, फिर उत्तम अधिकारी, तो फिर वो निर्भय हो जाता है। मध्यम अधिकार से ही निर्भय होने लगता है। तब ये सांसारिक विपत्तियों के लिए और परिवर्तनों के लिए उसको कम फिकर चिंता कुछ भी नहीं होगा, एकदम स्थिर होगा। जैसे भीष्म पितामह जी, व्यास जी, महाभारत का युद्ध होने जा रहा है, बहुत तरह से लोग समझा रहे हैं, व्यास जी भी आए उनको समझाए, और भीष्म पितामह जी ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया और धृतराष्ट्र को भी बहुत समझाया। उनके तो नाती पर नाती अपने हैं ये लोग, पांडवों की समझाने की कोई जरूरत नहीं, वो तो समझेगी। बहुत समझाया किंतु उन्होंने माना नहीं, इस समय माना नहीं। और ये हमारे भीष्म पितामह जी अस्त्र लेकर के खड़े हो जाते, देखो ये तुम लोग क्या करता है, पांडवों को देना पड़ेगा, ये मेरा राज्य है। तो क्या होता, वो सबको नाको चने चबवा करके और उसी समय में सब कुछ उनको दे दे। कुछ लोग नहीं कर सकते थे, किंतु उन्होंने जानबूझ करके भी कुछ नहीं किया, बल्कि दुर्योधन की तरफ से ही लड़ा। ये महाभागवत व्यास जी अंतर्जामी है, सब कुछ जानते हैं। जब उनको तीन पुत्र भी दे दिए, विदुर, धृतराष्ट्र, पांडु और पांडु, तीन पुत्र भी तो अपनी दृष्टि से ही उनको दे दिया, उनको तो पुत्र था नहीं विचित्र विद्य को, किंतु दे दिया। तो जो जन्म देने में संभव समर्थ है, इच्छा कर देते ना, अभी संपादे जाओ, अभी तुम मर जाओ, बस दुर्योधन इत्यादि सभी तो मर जाते, युद्ध इत्यादि सब अपने आप बंद हो जाता, सब काम हो जाता। किंतु अपनी योग विद्या का, अपनी शक्ति का उन्होंने प्रदर्शन नहीं, ये लोग जानते हैं क्या था। कृष्ण भी स्वयं भगवान होकर के भी कुछ क्यों नहीं किया, इसमें जगत का कल्याण था वो समझते हैं, ये कैसे कल्याण होगा। इसमें महाभागवत एकदम स्थिर रहता, भगवान के प्रति विधान में संतुष्ट रहता। सुनते हैं एक कोई संत थे, नौका से जा रहे, शाम का समय था, आकाश में बादल गिरा, धीरे धीरे एकदम अंधकार सा हो गया, थोड़े थोड़े बूंदी बांदी भी आरंभ हो गई और बड़ी जोर से आंधी चली। नौका तो पहले ही छूट गई थी, नौ नदी चौड़ी थी, बीचों बीच में गई और साथ ही साथ में बड़ी जोर से अंधड़ आया, नाव डगमगाने लगी, कभी इधर कभी इधर, और नाव में आदमी भरे थे, उसमें महात्मा जी भी बैठे हैं। नाव इधर से पानी में इधर से पानी लेती है और फिर इधर करवट बन जाती है। अब गए सबके प्राण सूखे, अब गई नाव, अब गई नाव। महात्मा जी जब देखा कि नाव डूब रही है, तो उन्होंने कमंडल से जर भर करके और नौका में फरना। लोगों ने कहा कि क्या ये साधु है न, ये क्या है, नौका एक तो अपने आप डूब रही है और नौका में पानी भर करके दोबारा आए, बड़े लोग सब बिगड़ रहे हैं, किंतु वो अपने सुध में है, वो किसी के तरफ देख नहीं रहे, वो पानी भरते ही चलेगा। भगवान की कृपा से नौका धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, इतने में आकाश छट गए, बादल छट गए, वर्षा भी थोड़ी सी, नौका भी अब किनारे पर लगने वाली, नौका भी अब सीधी हो गई। अब महात्मा जी ने पानी नीचे आरम्भ किया, नौ मंच लेकर के बाहर निकल आरम्भ, लोगों ने कहा ये पागल है और कुछ नहीं। अरे अब पानी फेंकने की क्या जरूरत है, नौका सब लग गई, अब तो डूबेगी नहीं। अंत में महाराज जी से कोई एक श्रद्धालु व्यक्ति ने पूछा कि आप नदी में पानी भरने लगे नौका में, अब फिर उसको खाली कर, ऐसा क्यों? अरे भाई प्रभु की इच्छा थी या नौका डूब जाए, तो मैंने सोचा कि भगवान की इच्छा के लिए हम भी उसका उसकी सहायता कर दे, प्रभु की प्रसन्नता ही सब कुछ करती है। इसलिए जब नौका डूब गए तो मैंने सोचा कि और भी इन्हें सहायता करते भी डूब जाए, और जब देखा कि प्रभु की इच्छा नहीं है, बादल छट गए, हवा भी बंद हो गई और नौका भी निकट आ रही है, तो देखा कि प्रभु की इच्छा है और नौका लग जाए, इसलिए मैं पानी भर करके प्रभु की इच्छा, मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं अपने प्रभु का उसके संसार में निकाल। ऐसे महापुरुषों को संसार के किसी भी विपत्ति से उद्विग्न नहीं, ऐसा ही भजन करने वाला निरुद्योग होकर के वो बतलाया ना, भाव का लक्षण ही बतलाया, शांति अपक्ष काल शांति माने क्या, समस्त विश्व की विपदाओं के आने पर भी वो एक शुद्ध नहीं, क्योंकि प्रभु तो हमारे अंदर में, वो जो इच्छा करेगा वो होगी और वो हो करके रहेगी, तो क्यों नहीं उसमें प्रसन्न रहा जाए। इसलिए संत लोग भी ऐसे ही, वो सर्वत्र अपने देव को देख, प्रहलाद महाराज जी क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं सर्वभूतेषु यः पश्यत् भगवत भावम आत्मनः, आत्मनः माने अपना भगवान के प्रति जो भाव देखते हैं, वो देखते हैं कि संसार के सब लोगों में वही भाव है। जैसे नृसिंह देव की आराधना प्रहलाद महाराज का, वो देखेंगे ये सब लोग नृसिंह देव की उपासना करते हैं, नृसिंह मूर्ति को सर्वत्र देखेंगे। हनुमान क्या देखेंगे, वो देखेंगे सारे विश्व के लोग राम की उपासना।